Ready, where are you now, Dee Dee?
This is Simone Gown.
Jai.
Yo, ladies. Whoa. Okay. Is this one of the choices for this song behind me? There's a kid song going on, so better you listen, because you can't hear me, I don't think.
Okay, ready.
Hey, Para এখানে দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান, এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা সকলেই বসে পড়েন। বলো ভীমসেন মহারাজ ভীমসেন জি কবে অবসর দিয়া যায়গা। আমি হম ইহা স্থান পর আয়ে ইসকা মহাপুরে গ্রহণ করেঙ্গে।
স্থান পর আয়ে হ্যাঁ ইয়ে হ্যাঁ সমুদ্রগড় নবদ্বীপ কে 16 মেয়ে জিতনে ভি ধাম হ্যাঁ সব মূল রূপ সে উপস্থিত হ্যাঁ। ये है नवदीप अंतर्गत द्वारकापुरी और गंगा सागर। जैसा कि हम हर साल सेवा करते हैं कि यहां पर राजा समुद्रसेन रहा करते थे, उनका एक व्रत था कि मैं इस नवदीप धाम को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं निवास करूंगा और भगवान मेरे को यही दर्शन दें। और भगवान तो वशीभूत हैं, इसलिए कालक्रम से जब पांडवों का राजसूय यज्ञ होना था तो भीम दिग्विजय करते हुए बंगाल क्षेत्र में आए। अब भीम जब बंगाल क्षेत्र में आए तो समुद्रसेन ने सोचा इससे अच्छा और अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि पांडवों की एक ही गति है वो है कृष्ण, और किसी प्रकार अगर मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूं कि भीम कृष्ण को पुकारे तो अवश्य ही कृष्ण उनकी रक्षा करने आएंगे और मैं उनके दर्शन कर लूंगा। और इस प्रकार भीम विराट वाहिनी लेकर आए, बहुत बड़ी सेना और राजा समुद्रसेन की छोटी सी सेना, किंतु उन्होंने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आक्रमण करेंगे, हम लोग पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार से युद्ध होने लगा और ऐसी स्थिति आ गई कि भीम ने देखा मैं तो अब गया और तब गया, अगर मैं छोटे से राजा के हाथ में हार गया तो पांडवों की क्या क्या लज्जा रह जाएगी। उन्होंने तुरंत कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण अपने सुंदर रूप वेणुम कमान तमरविंद दलायताक्षम बरहावताम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अपने सुंदर रूप में प्रकट हो गए देखकर राजा के हाथ से अस्त्र शस्त्र सब छूट गए और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे और भीमसेन समझे ओ राजा तो डर गया, राजा तो हार गया और उन्होंने जो है युद्ध को जीत लिया। हमारे गुरु वर्ग यहाँ पर हरि कथा के वैशिष्ट और चमत्कारिकता को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर आकर समुद्र सेन और भीम के बीच का उपाख्यान लोगों को श्रवण कराते हैं और खुद पक्ष विपक्ष बनकर हरि कथा की चमत्कारिता को प्रकट करते हैं। किंतु एक बात सत्य है, हर साल भीम पक्ष की ही पराजय होती है। कोर्ट में भी अगर कोई केस 10-20 बार पराजित होता रहे तो अगली बार वो बिना तर्क और वितर्क के ही पराजित मान लिया जाता है। यद्यपि हम भीम पक्ष में रसानंद प्रभु जी हैं, हमारे बड़े पूज्य हैं, उनको अवसर दिया गया है, किंतु कुछ भी करें अगर पिछले 25 साल से हार तो उड़ा रहे हैं तो इस साल भी हार माननी पड़ेगी। और फिर भी अगर वो कुछ ऐसा तर्क रखते हैं तो निर्णय आप लोगों के हाथ में है, पराजय के लिए आप हम सब एक साथ मिलकर भीम पर आक्रमण कर देंगे और कृष्ण को यहाँ उपस्थित कर लेंगे।
हरे कृष्ण। ओम ज्ञान ज्ञानांजन चला गया चक्षुर मिलितम तेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हम लोग त्रिला गुरु जी का अनुगत में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं यह स्थान कोल द्वीप के अंतर्गत श्री समुद्रगढ़ बांग्ला बोलते हैं कोल द्वीप अंतर्गत हिंदी बाद में मगर आप बात हिंदी में करेंगे। हरे कृष्ण अंतर्गत ये समुद्रगढ़ है। यदि अभिर्ना वृंदावन ये गुप्त वृंदावन इसलिए हमारा आगे श्रवण कर श्री गौरव मंडल भूमि देवा जाने चिंतामणि पार है ब्रज भूमि बाप। ये गौर मंडल होला अभिर्ण गुप्त वृंदावन अभिर्ण वृंदावन यदि वृंदावन ये नवद्वीप धाम के चिंतामणि स्वर्ग तीन चिंता करें एखने बास कर लो बेतार वृंदावन बास एवं नवद्वीप बास दुई जगह एक संगे बास है और ये होला ये स्थान होला समुद्रगढ़। अगर यहाँ पर कोई परिक्रमा में आए ये स्थान तो माना गया कुमुद वन और खजिर वन। हम लोग जो वृंदावन में गए उनको पता होगा ये स्थान होला खजिर वन एवं कुमुद वन। ये स्थान जो ब्रजमंडल के कुमुद वन और खजिर वन आते वही दो वन परिक्रमा फल यही स्थान एले पाए जाए एवं ये स्थान में आने पर हम लोग कोई गंगा सागर जाते हैं। हाँ इसलिए गंगा सागर यदि यहाँ पर अगर कोई आ गया उनको गंगा सागर जाने का कोई जरूरत नहीं है। यदि यहाँ आने पर उनको गंगा सागर में जाने का भी फल उनको यही मिल जाएगा। अनेक लोग मानते हैं गंगा सागर के लिए खूब पुण्य है किंतु यही स्थान है नहीं पर गंगा सागर हो जावे एवं तार संगे संगे समुद्र करे आकार तो फल पावे नहीं। अतएव ये स्थान होलो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जत तीर्थ आते समस्त तीर्थरा श्री गौरचंद्र कृपा पवार जने तारा नवद्वीप धाम तारा निवास करते नवद्वीप धाम परिक्रमा कर ले और कुठाए और परिक्रमा कर जेता ना और वैष्णव वगैरह अनुगत कर ले तो कोई कथा ही नहीं। एजन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवामी प्रणय भक्त संगे। भक्त के अनुगत यदि हमार नवद्वीप धाम परिक्रमा करी तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन भ्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे तीर्थ फल साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर पतित तीर्थ करार मूल उद्देश्य हलो गुरु वैष्णव अनुगत्य भगवत कथा श्रवण करा तीर्थ स्नान कर ले
একটু সময়ের জন্য একটু পাপ যাবে, কিন্তু হৃদয় থেকে কখনো বৃত্তি যাবে না। কিন্তু গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে যদি ধাপ পরিক্রমা করা হয় হরি কথার দ্বারা, তার দ্বারা মানব পরিষ্কার হবে, এই মান ভগবতের চরণে লেগে যাবে, আর সব পাপ তো নিজে থেকে চলে যাবে। অতএব তার জন্য কোন প্রকার নেই। এই জন্য আপনারা পরম সৌভাগ্যবান গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্য আপনারা এই সমস্ত স্থান দর্শন করতে। এখন আমাদের অন্য বিষয় দিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ হিন্দি এবার বলবো। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ, আপ লোক শ্রবণ কর রে থে, ভীমসেন আর সমুদ্র সেন কি বাত হে, আপ লোক বিচার করনা, প্রভু জি বতা রে থে আপ লোক উপরে বিচার ছোড় দিয়া হ্যায়। কেতে ভীমসেন জো ইয়াহ পর আনে কা থা কারণ, কেতে যুধিষ্ঠির মহারাজ কা মন মে ইচ্ছা হে রাজস্ব যজ্ঞ করেগি। রাজস্ব যজ্ঞ কা উনকো মূল উদ্দেশ্য নহি, রাজস্ব যজ্ঞ মতলব হোতা হে আগর কোই রাজস্ব যজ্ঞ করে উসকা তাৎপর্য হে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মে জিতনে সারে রাজা উনকো আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ তো পরম ভক্ত হে, ইসলিয়ে উনকো এসব যজ্ঞ ফজ্ঞ সে কোই জরুরত নহি। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি রাস মে জো গোতা লগা রহে হে উনকো যজ্ঞ কা ক্যা জরুরত হে, লেকিন কেবল উনকো এক হি উদ্দেশ্য থা, হম ইয়ে চিজ কো স্থাপন করনা চাহতে হে। অগর জগত মে কোই পূজ্য হো তো একমাত্র ভগবান কৃষ্ণ হে। আপ লোক কো পতা হোগা রাষ্ট্রীয় যজ্ঞ মে জব নম্বর আয়া কিসকো সবসে পহলে পূজা হোনি চাহিয়ে, वहां पर सहदेव ने कहा पूज्य एकमात्र भगवान कृष्ण है जो गुण हम परम ब्रह्म मनुष्य लिंग सखात मनुष्य लिंग रूप में ये सखात परम परम परमेश्वर परात्पर तत्व कृष्ण है, केवल यही एकमात्र पूज्य है। इसलिए केवल कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने राष्ट्र यज्ञ के आरंभ किया, लेकिन उसके लिए बहुत सारी पैसा चाहिए और सारा सारे राजा उनको अनुगत स्वीकार करनी चाहिए, तभी कर सकते हैं। तब अलग अलग दिशा में उन्होंने अलग अलग भाइयों को छोड़ दिया। कहते पूर्व दिशा का तरफ में उन्होंने भीमसेन को भेजा। जब भीमसेन यहाँ पर आए, आप लोगों ने श्रवण किया, यहाँ पर समुद्रसेन नामक राजा यहाँ पर निवास करते थे, लेकिन ये कौन है ये चीज को समझो। कहते ये साधारण एक साधक है, इसलिए कहते भक्ति दो तरह का है, कहते एक राधानुगा भक्ति और एक राधास्मिता भक्ति है। कहते भीमसेन कौन है, कहते ये राधास्मिका है, मतलब ये भगवान कृष्ण का नित्य परिकर है। अच्छा। इस द्वारा का कृष्ण की नित्य परिकर भीमसेन है, ये साधारण व्यक्ति नहीं।
इसलिए क्या कर रहे हो, इसलिए हरे कृष्ण आवाज आ रही है, हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी भीमसेन राधास्मिका भक्ति है, हाँ राधास्मिका अनुगत्य में जो भजन कर उससे राधानुगा कहते हैं। तो भीमसेन भगवान का ये नित्य परिकर है और कृष्ण का हर विषय, ये महाभारत युद्ध में केवल अकेला भीम को देकर के संपूर्ण महाभारत युद्ध को उन्होंने संपूर्ण शासन करवाया। केवल अकेला ही भीम था, जो अकेला ही सौ भाइयों को मारा, केवल भीम है। हाँ इसने कभी इंसान नरसिंह देव भी भगत को होकर के विशासन को उन्होंने बद करवाया। इसमें ये राजा सूचा भक्त है और समुद्र सेन के राजा थे, तब ये साधारण एकदम साधक है, अभी साधन कर रहे हैं, ये चीज को समझो। अभी भगवान भगवान कोई दर्शन उनको नहीं मिला है। जब भीम से संपूर्ण देश को जय करते करते यहाँ पर आए, ये समुद्र सेन राजा क्या सोच रहे हैं, कहते अभी तो भगवान को दर्शन मेरा मिला नहीं, किसी को समझो। अभी तो फिर भगवान दर्शन मिला ही नहीं, उन्होंने देखा ये जो भीम है ये कृष्ण का नित्य परिकर, कृष्ण का परम भक्त है, अगर किसी तरह से इसको मैं हरा दूं, फल बल तरीका से किसी तरह से अगर हरा दूं, तो भगवान भक्त अवसर भगवान का प्रतिज्ञा है, कौन सा यहाँ प्रतिज्ञा नामे भक्त परम गति, भगवान स्वयं प्रतिज्ञा भक्त उत्तर करवाया, मेरा भक्त का विनाश नहीं, भीमसेन का कोई विनाश है नहीं। सीधे कहने पर ही क्या करेगा, कृष्ण इनका प्रभु, कृष्ण को बुलाएंगे, कृष्ण को बुलाने पर जब कृष्ण ही आप प्रकट होंगे तो मैं दर्शन कर लूंगा, उस जगह ही क्या की गई। लेकिन ये कोई शक्ति कोई तरीका है नहीं। कृष्ण गीता में बताए, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तो तदवी भी परिपात है ना परिप्रश्न न सेवया, क्योंकि नियम होता है किसी वैष्णव के पास में जाकर के तदवी से परिपात फिर परिप्रश्न फिर सेवा, उसके बाद में फिर जा करके वो हमें विश्व ज्ञान देंगे। लेकिन इनका क्या तरीका है, भक्तों को मैं परास्त कर दूंगा, इसलिए इसका मतलब है इनका अंदर भक्ति की भावना कुछ है नहीं, किसी भक्त को परास्त करके कि भगवान उनको रक्षा करने के लिए आएंगे दर्शन कर लूंगा। इसका मतलब है ये चीज का समझो, जैसे भगवान का लीला दो तरह का है, एक नित्य और एक नैमित्तिक है। जो जो भगवान जिस चैतन्य महाप्रभु जो अवतीर्ण हुए हैं वो भक्त के पास में एक स्वरूप है, लेकिन जो भक्तों के लिए भगवान अवतीर्ण होने पर उसी समय जो साधारण लोग होते हैं उसी समय उनको दर्शन कर लेते हैं। लेकिन दर्शन प्रेम से पहले दर्शन नहीं है, प्रेम में केवल भगवत दर्शन, उसको पहले कोई भगवत दर्शन नहीं। भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु आए अपना भक्तों के लिए, और अगर उनके भक्तों के लिए आए अगर उसी समय अनुसंग रूप में जैसे कृष्ण गए मथुरा में वहां पर भक्त लोग दर्शन किया व्यवस्था था, अनुसंग रूप में अगर कुछ लोग उनको दर्शन कर लिया लेकिन वो दर्शन को दर्शन शास्त्र में नहीं बताया, क्योंकि दर्शन दर्शन है नहीं, क्योंकि केवल प्रेम से कृष्ण दर्शन है। इसलिए अगर समुद्र से राजा हाँ भीम से तो रक्षा करने के लिए कृष्ण आए और उनको निमित्त बनाकर अगर दर्शन कर लिया तो क्या कौन सा बड़ी बड़ी बात हो गया। लेकिन भगवान तो उनको दर्शन करने के लिए नहीं आए ना, भगवान किस लिए आए थे? भीम को रक्षा करने के लिए, अनुसंग रूप से दर्शन कर लिया, उसने क्या हो गया? इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए भीम से राजा ये मित्र परीक्षा रही है भगवान। हरि बोल। कैसे बड़े बड़े तर्क, जैसे विराट वाहिनी सेना है ऐसे बड़े बड़े तर्क हैं। किंतु हमारे गुरु जी कहते हैं साधक अपनी यात्रा शुरू करता है कामाख्या से, है अभी काम आ सकते हैं संसार में, हम लोग अपराध संभव है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर में हर समय रचे बचे रहते हैं। यात्रा कहाँ से प्रारंभ करते हैं? कामाख्या से। किंतु वहां पर दुर्गा देवी हमारे कान में मंत्र दे देती है, कृष्ण मंत्र है, वो अपना प्रभाव इधर दिखा रहा है और अभी हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हुए कहाँ आ गए? गंगा सागर में। इस गंगा सागर में नहीं, तो समुद्र के किनारे गंगा सागर है, वहां पर आकर स्नान तो किया किंतु वहां लैट्रिन बाथरूम नहीं है, घर नहीं है, गंगा समुद्र का किनारा ही तो है, इसलिए शरीर का मल भी वहीं त्याग कर दिया और उसको पानी वहां से बाहर ले जाता है, इसलिए थोड़ा मल शरीर में कम हुआ, अनर्थ कम हुए, अब आगे बढ़ गए। कहां पहुंच गए? गया धाम में। गया धाम में जाकर हमने कर्मनाशा नदी में स्नान किया और जो कर्म हर समय प्रतिक्रियात्मक है, चाहे वो पानी पीना भी क्यों ना हो, अगर अपने लिए पानी पिएंगे तो वो भी प्रतिक्रियात्मक है, साधु का प्रसाद समझ के जल ग्रहण करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है। गया में स्नान करके कर्मों को त्याग करके आगे बढ़ गए, वाराणसी धाम में पहुंचे, शिव जी की कृपा ग्रहण की और सुंदर रूप में माधव के दर्शन करने प्रारंभ किए। अभी यात्रा बहुत लंबी है, वहां से आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद पहुंचेंगे, प्रयागराज, वहां पर वेणी माधव है, सारा प्रभाव उसमें माधव का दर्शन है और उसके बाद माधव के घर मथुरा और वृंदावन पहुंचेंगे। किंतु ऐसा लगता है रामानंद प्रभु की गाड़ी अभी गया और बनारस के बीच में अटकी हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अभी जो भीम है वो रागात्मिक जन है, वो नित्य परिकर है भगवान के, और समुद्र सेन जो है वो अभी साधारण साधक है। किंतु गुरु जी भक्तों के वैशिष्ट को स्थापित करते हुए उनमें तारतम्य कौन तर है और कौन तम है उसको स्थापित करते हुए कहते हैं कि पहला भक्त है ज्ञानी भक्त। वो कौन है? जैसे प्रहलाद महाराज, उनके नरसिंह देव को भूख प्यास लगती नहीं क्योंकि भगवान है, शक्ति के मालिक है, समुद्रों को बनाने वाले, नदियों को बनाने वाले, उनको भूख प्यास क्यों लगेगी? दूसरे भक्त हैं उनसे श्रेष्ठ, वो है शुद्ध भक्त, वो है अम्बरीश महाराज। वो अपनी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके नर्वस उनकी सेवा करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ है प्रेमी भक्त कौन? हनुमान। उनका सर्वस्व ही रामचंद्र हैं, दास के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के लिए अगर सारे शरीर में सिंदूर भी लगाना पड़े तो वो उनको स्वीकार है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेमातुर भक्त, प्रेम पर भक्त। प्रेम पर भक्त कौन है? उद्धव आदि। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेमातुर भक्त। ब्रज के भक्तों को प्रेम आतुर कहा गया है, वो सब समय कृष्ण के लिए आतुर हैं। उद्धव जी प्रेम आतुर भक्त हैं और पांडव आदि प्रेम पर भक्त हैं। किंतु ब्रज भक्तों की इन पांचों श्रेणियों में गिनती नहीं की गई क्योंकि वो उनकी भक्ति क्या है? बहुत ऊंची भक्ति है, और समुद्र सेन ने कौन से कृष्ण के दर्शन किए? प्रभु कृष्ण के, वेणुन का नाम था अरविंद। उन्होंने किसके दर्शन किए? गौरांग महाप्रभु के, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप के। उनके सामने जब कृष्ण प्रकट हुए, तुरंत कृष्ण ने क्या किया? अपनी कुमुदवन की लीला प्रकट की। कुमुदवन की लीला में कृष्ण और गोपियां फूल तोड़ रहे हैं और एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। कितनी गोपनीय लीला है। और भीम कौन है? अधिक से अधिक कृष्ण की, द्वारकाधीश कृष्ण की सख्य भाव में सेवा कर सकते हैं। इससे अधिक भीम का अधिकार नहीं है। अधिकार पाने के लिए ऐसा सुना जाता है कि वो ब्रज में जाम कुंड के तट पर बैठकर तपस्या करते हैं। उनको अधिकार मिला है या नहीं मिला, ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। इसलिए रसानंद प्रभु का ये कहना कि भीम रागात्मिक जन है इसलिए उनसे श्रेष्ठ है समुद्र सेन से, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि अम्बरीश महाराज जो है प्रहलाद और भीम आदि से भी, भीष्म आदि से भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात रसानंद प्रभु का कहना है कि युद्ध में पराजय हुई समुद्र सेन की। समुद्र सेन की पराजय नहीं हुई, समुद्र सेन की जीत हुई। क्योंकि उनके हाथ से शस्त्र और अस्त्र रागानुग भक्ति के अंतर्गत छूट गए, जबकि भीम में अभी अभिमान है। महाभारत से पहले कृष्ण ने देखा अर्जुन के साथ कि ये तो आकाश मार्ग से जा रहे हैं कृष्ण और अर्जुन, और नीचे देखा कि एक पूरा बंद का बंद उजरता हुआ चला जा रहा है। नीचे उतरे, देखा कौन है? एक धनुषधारी ने ऐसा बाण चलाया है कि पेड़ों को उखाड़ता हुआ चला जा रहा है। तो कृष्ण उससे पूछे, भाई तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम बरपरी है। अरे तुम तो बहुत अच्छे धनुर्धारी हो, जरा एक बताओ तो इस पेड़ के सब पत्तों को छेदन कर सकते हो अपने बाण से? हाँ अवश्य कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा, करो छेदन। उसने ऐसा बाण चलाया जो एक एक करके सब पत्ते छेदन होने शुरू हो गए, किंतु एक पत्ता नीचे गिरा, उसको कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। और जो ही वो बाण उनके चरण की तरफ आया, कृष्ण को भी मारने के लिए बाण आया, तो कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन से बरबरी का गला काट दिया। और गला काट के बोले, बरबरी बोल, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा था और उस सेना का पक्ष लेता जो पराजय हो रही होती और उसको मैं जिता देता, किंतु अब मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत के युद्ध का दर्शन करूं और साथ ही साथ आपका दर्शन करूं। तो कृष्ण ने उसको एक पेड़ पर लटका दिया और वो सब युद्ध देखता रहा। युद्ध के अंत में भीम अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध को मैंने जीता। अर्जुन बोला, नहीं, युद्ध को मैंने जीता, मैं महारथी हूँ, मैं 1,10,000 सैनिकों से लड़ सकता हूँ। भीम बोला, तुम 10,000 सैनिकों से लड़ सकते हो? मैंने तो रथ के रथ हाथी के हाथ में उठा के सैनिकों के ऊपर ऐसे मारे कि 1,10,000 सैनिक खत्म हो गए, इसलिए इस युद्ध को मैंने जीता। तो कृष्ण बोले, तुम दोनों शांत रहो, चलो मेरे साथ, अभी मेरे हो जाता है कि इस युद्ध को कौन किसने जीता। तो वहां पर आए युद्ध भूमि में, वहां पर बरबरी का सिर टंगा हुआ है। और बरबरी से पूछते हैं, बोलो बरबरी, बताओ युद्ध भीम ने जीता या अर्जुन ने जीता? बरबरी कहता, प्रभु युद्ध को किसी ने नहीं जीता, युद्ध को तो आपने जीता है, मैंने तो सबको आपको मारते हुए देखा है। तो ऐसे भीम जिनको अभी अभिमान है कि मैं युद्ध जीतने वाला हूँ, और एक तरफ वो समुद्र से जो रथ की मूर्ति गौरांग सुंदर के दर्शन करके गदगद हो गए हैं, कौन बड़े हैं ये आप लोग ही निर्णय कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखो जीव गोस्वामी सत्य सुंदर कहते हैं, मुक्ता अपनी विग्रह कृत्या भगवतम सेवंतम। इसका मतलब है मुक्तावस्था में मेरे नित्य सिद्ध करकर अलग अलग स्वरूप में अलग अलग लोक में अलग अलग रूप में सेवा करते हैं। अब भीम की सेवा को देखो, पहले ये भीम कौन है? कभी बाल का अवतार है, और ये भीम से साक्षात ये हनुमान जी राम लीला से हनुमान की सेवा करते हैं, और फिर वही मध्वाचार्य करके व्यास देवी का अनुदत्त में हमारा जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का जो मूल आचार्य रूप में भीमसेन है, वही मध्वाचार्य का रूप धारण करें। और महाप्रभु जब अपना संप्रदाय जब चुनने जा रहे थे तो उन्होंने
वहां पर देखा सभी मंत्र दंड है, क्योंकि महाप्रभु जिस प्रेम को देने के लिए आए थे और उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए थे, इसलिए महाप्रभु देख रहे थे कौन सा संप्रदाय में ये चिन्ह है। तो उन्होंने देखा दशी मंत्र दंड है और उनका संप्रदाय में आठ सन्यासियों को देखा, जो आठ सन्यासी भक्ति भाव से भजन करते हुए, इसलिए मध्वाचार्य के रूप में भी सेवा करते हैं और द्वापर युग में तो भीम रूप में सेवा किए ही है। और उन्होंने फिर क्या किया, कहते कि चैतन्य महाप्रभु का लीला में ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राय भगवान लोग कहते हैं, कहते भवानंद तुम पांडु हो, तुम्हारा ये जो पांच बेटे हैं ये पंच पांडव है। इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु तो हमारे समुद्र प्रेम, उन्होंने तारे का दर्शन नहीं किया, उन्होंने स्वप्न में दर्शन किया है, तारे का दर्शन नहीं आता है, क्या उन्होंने स्वप्न में देखा गौर सुंदर नाचते हुए, तो उन्होंने इतना देखा, लेकिन जो साक्षात राय रामानंद का, राय रामानंद को साक्षात दिशा का है, दिशा खाती छोटे बहन समझो, बन करके ये भीम रूप आते हैं भवानंद का पेटे बन करके, तो महाप्रभु का परिकर रूप में स्वयं आए हैं। इतने महाप्रभु रस में जो डूबे हैं, गौर प्रेम रसार नवे चतरंग जगा डूबे तो राधा माधव अंतरंग, महाप्रभु प्रेम रस में डूबने पर महाप्रभु स्वयं उनका अपना परिकर रूप में स्वीकार किया है। जब महाप्रभु प्रेम रस में डूबे तो उनके काफी क्या रह गया, और देखो उनने जन्म कहां पर लिया, तो राधा कुंड के ऊपर में भिक्ष रूप में जन्म लिया। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड खाने के लिए जा रहे थे, ये पंच पांडव उनको स्वप्न देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भिक्ष रूप में व्यक्ति प्रेम को पाने के लिए हम यहाँ पर भिक्ष रूप में भजन कर रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं, ये स्वयं उनको बताते हैं। और हमारे समुद्र सेन महाराज कृष्ण को कहां पर दर्शन किया, दर्शन किया कुमुद वन में, उनने स्वप्न में देखा कुमुद वन में राधा कृष्ण को विहार करते हुए, जब कुमुद वन में विहार करते अलग अलग सखियों को लेकर वहां पर फसल किया त्रिपत किया सतर्क को किया राज किए, लेकिन राधा कुंड में, राधा कुंड में दूसरे नहीं, केवल राधा कुंड में केवल कृष्ण का तपस या गोपियां ही केवल वहां पर निवास करते हैं, वहां पर दूसरे का कोई प्रवेश नहीं है, कोई प्रवेश नहीं करते थे वहां पर। इसलिए जहां पर भीम से स्वयं राधा कुंड के ऊपर में राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु का परिकल्प है ये, वैसे ही उनको ब्रज लीला में प्रवेश हो गया। कभी कहने की कौन सा ब्रज लीला में, कहते राधा कुंड में भिक्ष रूप में, और वहां पर राधा रानी की कृपा को पाने के लिए, वहां पर राधा रानी की प्राप्त करने के लिए मंजरी बनने के लिए वहां तपस्या करते हैं।
ऐसा है कि नवद्वीप में गौर लीला माधुर्मय लीला सप्तम में हो रही है, हम लोग देख सकते हैं नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हमारा ब्रज लीला में गौर लीला में अधिकार ही नहीं है। भीम का कौन सी लीला में अधिकार है, द्वारका लीला में, ब्रज लीला के लिए तो वो इच्छा कर रहे हैं, अभी दर्शन थोड़ी कर रहे हैं, तो सर हम प्रभु ने शास्त्र ठीक से पढ़े भी नहीं है। अरे वो गोपी में महाप्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु गए और उनसे पूछते हैं मध्वाचार्य के जो आचार्य हैं उस समय मध्वाचार्य मठ के गोपी मठ के जो आचार्य हैं उनसे पूछते हैं, बोलिए महाशय साध्य क्या है, वो कहते हैं साध्य महाश्रम धर्म का पालन करते हुए सब कुछ कृष्ण को समर्पण करते हुए मलाश्रम धर्म का पालन करते हुए कृष्ण के चरणों में कर्मार्पण करते हुए और चार प्रकार की मुक्ति को पाना चाहते है, जबकि भागवतम कहते हैं पालक के सामीप्य स्वरूप साक्षी सीमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जनः। तो महाप्रभु बोले भाई तुम्हारे उत्तर से तो हम संतुष्ट नहीं है, किंतु अवश्य तुमने सभी मंथन गोपाल को निग्रह रूप में स्वीकार किया है, यही बहुत बड़ी तुम लोगों की सेवा है, तुम लोग धन्य हो। इस प्रकार महाप्रभु ने उनको वंचित कर दिया और आगे बढ़ गए उस रूपी में जहाँ पर सत्यवादी संप्रदाय हर समय स्वाहा 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 करता रहता है, हाँ? और ब्रज भक्ति के बारे में उनको कुछ पता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि आज सन्यासी गोपी भाव में शिक्षित है, किंतु अगर गोपी भाव में शिक्षित है तो क्यों नहीं चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम की चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीकाओं को पढ़ते हैं, ना? इनको पढ़ने से ब्रज भक्ति में अधिकार उत्पन्न होता है। अतः बड़ा स्पष्ट है कि भीम जो है द्वारका द्वीप के परिकर है और समुद्र सेन गौरांग महाप्रभु के श्वेत द्वीप में और कृष्ण के ब्रज में एक साथ ही परिकर है। इससे अधिक प्रमाण की और क्या आवश्यकता है कि स्वयं कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। दशानंद प्रभु का कहना है कि समुद्र सेन ने स्वप्न में देखा कृष्ण को और गौरांग महाप्रभु को। इनसे भक्तिनाथ ठाकुर नवदीप धाम महात्म ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में कृष्ण चले आए और अपने ब्रज रूप में चले आए। खाली कृष्ण रूप ही नहीं, उन्होंने कुमुद वन दिखा दिया, इसको कुमुद वन माना गया है। उन्होंने कुमुद वन दिखा दिया और उसमें कृष्ण की जो गोपनीय लीला होती है उसके भी दर्शन करा दिए। इतने देर कृष्ण का मन नहीं भरा, क्योंकि राजा साधारण भक्त नहीं है, राजा राजानुग भक्त है। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको मिलित अपना राधा कृष्ण मिलित गौर महाप्रभु का रूप दिखाया और कहा कि तुम धन्य हो, तुम मेरी लीला के आस्वादन करने के अधिकारी हो। जबकि भीम अभी तक तपस्या ही कर रहे हैं राधा कुंड में, उनको ब्रज प्रवेश का अधिकार मिला है या नहीं मिला इसका प्रमाण रसानंद प्रभु के पास नहीं है। गौर प्रेम मंदे सामने नहीं किया मतलब फेल हो गई। मेरा पक्षों भी बाकी है, अगर इनके पास से मेरा प्रश्न कोई उत्तर नहीं, इसलिए फेल पाऊंगा। यहाँ मंदिर के लिए आप लोग कुछ बनाने लगे, क्योंकि यहाँ ये नया मंदिर निर्माण हो रहा है,
अभी लोग कुछ कुछ बनाने दे दीजिएगा। जाना है, देर हो रहा है।
Dhanyavad. I tried to find someone to tell you the English, but no one wants to. Essentially, they have a debate here every year about who's a better devotee, Samudra Sen or Bheem. So I think you'll have to control your Parikram book if you want the details.
Okay. So what's next?
Maybe Krishnakarni can do. Let me ask.
Today we have a big debate. Rasananda Prabhu, really strong. He's giving offers that
him is not lesser devotee than Samudra Singh. Because here in Samudra Raj, there was a battle between Bhim Sen and Samudra Sen. And so Vasananda Prabhu was, in essence, actually it's a long, many points, but he was telling that Bhim is Rajatnik Bhakta, and actually he has performed many seva, and before in Ramachandra's time, he's Hanuman, and in Krishna's time, he's Bhim, and here in Kali Yuga, he's Madhvacharya, and even Mahaprabhu took shelter in his sampradaya. But then, taking the part of the side of Samudra Sen is, what's his name? I forgot his name, one Brahmachari. Anyway, he's telling the Gurudev, this is the punching line that Gurudev is saying, that Bhim is the eternal particle of Dwarkadish Krishna. And really, if you look at it, the parikars of Mahaprabhu are obviously higher rest. Say, Samudra Singh is parikar of Mahaprabhu, that means he's parikar of Radha and Krishna in Braj. And so obviously
it's so nice to hear. Can you still hear me?
Yes, I hear you.
Yeah. Well, I think that's basically the essence of the thing. I didn't want to stop, but Siddhamaj has to stop.
Okay. Everybody can download the Navadvip Purushottama book from bhaktibooks.info or bhaktibooks.com. The Navadvip Purushottama book can be found online at purebhakti.com or bhaktibooks.com.
Yes.
And we're waiting for you to send us more books also.
Oh, I think I've sent everything, huh?
No, there must be something new.
There's new Hindi book, and that's Gaur-Janadesh Deepika, and there's the Tata Shloki Bhagavatam and Bhagavat Agama Shimara. They just came out yesterday.
Oh, it's
and
static.
Available now in Navadvip. But they're all in Hindi. There's no English yet.
No, that's okay. So send me those PDFs when you get back to Mathura.
Yeah, okay. I have to ask them. Yes. I'll ask them and I'll send it to you.
Thank you, Prabhu. Prabhu. Jai Guru Dev. Jai Prabhupada.
Where do we go next? It's like going to be about 2 hours or something. An hour,
Hare Krishna.
Dhanyavaad.
Hare Krishna. I think it's going to be an hour or more till we go to Vijayanagar. You still want me to call?
I think we'll call it a night.
Yeah.
And then,
yeah.
And then we'll see you for class.
Are you sure this is the way?
Okay. Hare Krishna.
Jai. Thank you, Dee Dee.
Hare Krishna. Dhanyavaad to everybody. Jai Navadvip Dham.
Jai Navadvip. Jai Mahaprabhu. Jai Gurudev. Jai Prabhupada.
Hari Hari Bol.
Hari Bol.